Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Svetashvatara Upanishad ke swadhyay mein kaun sa pehla mantra? दूसरे अध्याय का पहला मंत्र, थोड़े भाष्य बाकी है। युञ्जानहं प्रथमं मनस् तत्त्वाय सविता धियः अग्निर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत् युञ्जानः प्रथमं मनस् तत्त्वाय सविता धियः अग्निर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत् युञ्जान प्रथमं मनस् तत्त्वाय सविता धियः अग्निर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत। भाष्य थोड़ा सा बाकी है, लास्ट पैराग्राफ। एतत् उक्तं भवति, श्लोक का ये तात्पर्य है। क्या बोले? ज्ञाने प्रवृत्तस्य मम मनो, ज्ञान मार्ग में लगा हुआ मेरा मन, तत्व अनुसंधान में लगा हुआ मेरा मन। बाह्य विषय ज्ञानात् उपसंगृत्य, अनात्म पदार्थों में ये स्वाभाविक रूप में जाया करता था अनादिकाल से। बाह्य माने अनात्म पदार्थ, विषय है ना। बाह्य विषय ज्ञानात् उपसंहृत्य, वहां से उपसंहार यानी वापस लाकर, उपसंहृत्य उपसंहार करके। परमात्मनि एव संयोजयतु, संयोजयितुम परमात्मा में ही लगाने के प्रयोजन से, लगाने वाले क्योंकि विषय में लगाने वाले और परमात्मा में लगाने वाले, तो ये दोनों को लगाने वाले तो उसके अनुग्राहक देवता ही हैं, उसके अनुग्राहक देवता यानी आंख को विषय में लगाने वाले आंख के अनुग्राहक देवता, कान को विषय में लगाने वाले कान के अनुग्राहक देवता, जिह्वा को विषय में लगाने वाले जिह्वा का अनुग्राहक देवता, नाक को विषय में लगाने वाले नाक का अनुग्राहक देवता, इत्यादि इत्यादि। तो अनुग्राहक देवता आत्मा देवतात्मा देवतात्मनाम देवतात्मनाम अग्नि आदिना उनके अधिदेवता, अनुग्राहक अधिदेवता। अध्यात्म अनुग्रहित होगा तो अधिदेवता अनुग्राहक होंगे, है ना। अनुग्रह करने वाले को अनुग्राहक, अनुग्रहित होने को अनुग्रहित, तो इंद्रियादि अनुग्रहित होंगे तो इंद्रियादि सबके देवता अनुग्राहक होंगे। तो सूर्य के अनुग्रह से आंख रूप देखने में समर्थ है, दिग्देवता के अनुग्रह से कान शब्द सुनने में समर्थ है, अश्विनी कुमार के अनुग्रह से नाक गंधक ग्रहण करने में समर्थ है, वरुण के अनुग्रह से जुवा रस चाखने में असमर्थ है, और वायु देवता के अनुग्रह से त्वचा स्पर्श में अनुग्रह समर्थ है। इसी तरह अग्नि आदि नाम यत सर्व वस्तु प्रकाशन सामर्थ्य है ना, तो इन देवताओं के अनुग्रह से ये इंद्रियां आदि जो तत्त्व विषय को प्रकाशित करने में समर्थ हैं। तत्सर्वम अस्मद बागादिषु मन उपलक्षित मन सहित अस्मद बागादिषु हमारे ये वाणी आदि सभी इंद्रियां संपादयत सविता उपलक्षित, सविता माने देवता परमात्मा, या वो परमात्मा से ही प्रार्थना की गई है, क्योंकि ये भी बता दिया गया है ना विरतो दुश्चरिता ना शांत न समाहित है ना, ना शांत मानसो प्रज्ञाने ने मापनी आती, कोई व्यक्ति यदि दुश्चरित्र से उपशांत उपरमत उपरत होता नहीं है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करना कर नहीं सकता। और दूसरी बात है, कठोपनिषद में यह भी बता दिया गया है कि न बहुना श्रुते न है ना, ना वो भी अलग है। आजकल कुछ स्मृति कम होने लगा, शरीर बूढ़ा हो गया लगता है, तो एक कठोपनिषद का ही मंत्र है ना बहुना श्रुते न एमे वेशा वृणते तेन लभ्य तस्सा आत्मा विवृणते तन स्व नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य, तुम लोग अब हमसे भी ज्यादा बूढ़े हो गए लगता है, कोशिश करने पर आता है, संस्कार तो है ना। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुते न, तो एमे वेशा वृणते तेन लभ्य तस्सा आत्मा विवृणते तनुम स्वाम। हे नचिकेता, जिस तत्व को तुम जानना चाहते हो, अन्यस्य धर्म अन्यत्र अधर्म अन्यत्र अस्मात् कृता कृता अन्यत्र भूता च भव्या च यत् यो यदि शेषी तद वदा, यदि आप उस तत्व को जानते हो जो धर्म से भी परे है अधर्म से भी परे है, कर्म से परे है अकर्म से परे है, भूत से भी परे है भविष्य भी परे है वर्तमान से भी परे है, ऐसा कोई तत्व आप जानते हो तो बताइए। तो यमराज ने कहा कि जानते तो हैं, लेकिन वो तत्व ये नचिकेता नायम आत्मा प्रवचन है न लभ्य, जिस आत्मा को तुम जानना चाह रहे हो वह आत्मा प्रवचन के द्वारा प्राप्त होने वाला नहीं है। अब कोई शास्त्रीय व्याख्यान करके प्रवचन करके उपनिषद पर प्रवचन करके आत्मा को प्राप्त कर लोगे ये असंभव है, प्रवचन करके भक्त खुश हो जाएंगे तो दक्षिणा तुमको मिल सकता है, अच्छे दक्षिणा हो सकती है, तो और भी बढ़िया को तो कुछ भक्त ज्यादा खुश हो जाएंगे तो दक्षिणा से ज्यादा भी मिल सकता है ना। दक्षिणा तो ठीक है थोड़ा सामान्य है, दक्षिणा से ज्यादा होगा तो आश्रम चलाने के लिए लो महाराज, अन्न क्षेत्र के लिए लो महाराज, ये स्कूल के लिए, ये वृद्धाश्रम के लिए, ये हॉस्पिटल के लिए, ये भी हो सकता है नहीं, हो सकता है कि नहीं बोलो। सामान्य दक्षिणा तो ठीक है सामान्य उपचार के लिए होगा, तो नायम आत्मा प्रवचन है न लभ्य न मेधया, बहुत बुद्धि लगाने से भी मिलने वाला नहीं है, न बहु ना श्रुते न अपनी बुद्धि नहीं लगाइए, दूसरे के बात को सुन सुनकर विद्वान हो गए, बहुत से लोग तो ऐसे ही होते हैं, कुछ पढ़ के विद्वान होते हैं, कोई सुन सुनकर विद्वान होते हैं, बहुत श्रोत जो होते हैं ना वो सुन सुनकर विद्वान होते हैं, उनमें से हम भी पढ़ते हैं बहुत श्रोत विद्वान है ना, अब कोई है बहुपाठी विद्वान, बहुत पढ़ने से होने वाली विद्वता, कोई बहुत सुनने से होने वाली विद्वता है। नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुते न, फिर कैसे मिलेगा महाराज? तो यमराज ने बता दिया, एमे वेश वृणते थे न लभ्य। हाँ, तो यह दो व्याख्या किया है लोगों ने। एक व्याख्या तो ये करते हैं, जिसने परमात्मा का वर्ण किया है श्रद्धा भक्ति विश्वास निष्ठा के साथ, परमात्मा को वर्ण किया है, उसके सामने परमात्मा अपने सब स्वरूप दिखा देगा, अपनी सारी बात बता देगा, उसके सामने कोई रहस्य नहीं, छुपाए नहीं रखेगा, अपना सब कुछ व्यक्त कर देगा। दूसरी अर्थ किया है कि परमात्मा जिसको वर्ण कर लेता है वही परमात्मा का सही स्वरूप को जानता है। तो कहा कि परमात्मा के ये संकल्प में आ जाना चाहिए, तुम अपने को इतनी योग्य बना लो, इस तरह अपने को तैयार कर लो कि तुम्हें देखते ही परमात्मा के मन में ऐसा हो जाए कि इससे शादी कर लो, है ना? ऐसे लौकिक दृष्टांत से समझाते हैं महात्मा लोग, तुम ऐसे सज धज के रहो, या सज धज का मतलब पूरी साधनों से संपन्न हो जाओ, यम नियम आसन प्राणायाम आदि सत्साधन षड संपत्ति नित्यानित्य वस्तु वैराग्य विराग या मूत्र फलभोग विराग षड संपत्ति मुमुक्षुता, ये तुम्हारी सजावट के साधन है, तुम्हारे मेकअप के साधन है, ये मेकअप है, है? मार्केट में मिलेगा ये मेकअप? ये प्रेमपुरी में मिलेगा? ये मेकअप प्रेमपुरी के स्टेज में मिल सकती है। तुम अपने को दुल्हन बनाना है, परमात्मा को दुल्हा बनाना है, और तुम्हारी इच्छा है कि हमारी शादी परमात्मा के साथ हो जावे, तो तुम्हारी चाहने से नहीं होगा, वो परमात्मा भी तो चाहना पड़ेगा कि नहीं, वो भी तो चाहे ना, तुम्हें देखते ही उसके मन में ये इच्छा हो जाए कि अरे इसी से शादी करें, तो उसके लिए तो तुमको थोड़ा सा सज धज कर तो रहना ही पड़ेगा ना, है? सज धज के रहना पड़ेगा कि नहीं? तो सज धजने का साधन क्या है? एक साधन चतुष्ट है, षड संपत्ति आदि, इससे संपन्न होकर तुम तैयार होकर बैठो, परमात्मा घूमते हुए आएगा, तुम्हारे नजर पड़ेगा, देखेगा, तुम्हें देखते ही कहेगा अरे इतना सुंदर व्यक्ति है, इसको छोड़कर मैं और किसको वरण करूं, मैं तो इसी से शादी करूं। हमने बताया था ना एक दिन सौवरी ऋषि की कहानी, सौवरी ऋषि की कहानी बताया था ना, हजार वर्ष 10,000 वर्ष पानी में तपस्या करके शरीर एकदम जीर्ण शीर्ण हुआ था, अब उसकी शादी करने की इच्छा हो गई मानदाता राजा की लड़कियों के साथ, और बड़ी सुंदर सुंदर लड़कियां। राजा ने कह दिया कि आप जाइए, मेरी लड़की वरण करे तो शादी करना, अब लड़कियां वरण नहीं करेंगी तो फिर मैं जबरदस्ती तो करने वाला नहीं हूं महाराज। सौवर ऋषि ने विचार किया, ये राजा मुझे टड़का रहा है, तो मुझे क्या समझता है, ये बूढ़ा खड़ू से ऐसे ही हूं मैं अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन करता हूं। तुरंत संकल्प के काया व्यो इतने सुंदर हो गए वो सौवर ऋषि, भागवत में कृष्ण के लिए कहा साक्षात मनमथ मनमथ, रासलीला के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण ऐसा रूप धारण करके पहुंच गए, साक्षात कामदेव मूर्त रूप में कामदेव, अरे वो क्यों ना हो, कामदेव के हाथ में ही तो कृष्ण है, कामदेव को कामदेव बनाने वाला तो वही तो है, उसी की एक एक सौंदर्यता को कामदेव ने ग्रहण किया और कामदेव बन पाया है, और स्वयं अकाम होते हुए भी कामदेव को कामदेव बनाया, यही तो भगवान की लीला है, विशेषता है। तो गए कन्याओं के अंतपुर में तो सबने वरण किया, वो करें क्या, इसी तरह तुम इस तरह तैयार होकर सज धज के रहना कि तुम्हें देखते ही परमात्मा तुमको वरण कर ले, और उसने निश्चय किया तो बस तुमको प्राप्ति हो गई है। यमे वेश वृणुते तेन लभ्य तस्यै स आत्मा विवृणुते तनु स्वान। तो ये उपनिषद का प्रसंग है, तो वो भी तो वर्ण करे। हमारे एक तरफ वर्ण करने से विवाह संबंध मधुर नहीं होता है, है? दोनों तरफ से वर्णन हो तब ना जो विवाह संबंध मधुर सुमधुर आनंदमय होगा। तो इसलिए वो वर्ण करे, इसके लिए तैयारी क्या है? ये तैयारी है। तत्सर्वम अस्मात् भागादिषु संपादयत् सविता। कौन संपादन करे? तो सविता, सविता उपलक्षित परमात्मा। यत् प्रसादात्, ये जिसकी कृपा से अवाप्यते योग सामर्थ्यम, तो उसी की कृपा से उसी को प्राप्त करने की योग सामर्थ्यता प्राप्त होगा हमें। परमात्मा की ही कृपा से परमात्मा को प्राप्त करने के लिए योग सामर्थ्यता की भी प्राप्ति होगी, और उसके लिए कम से कम उसकी प्रार्थना तो करनी पड़ेगी ना। तो यहां सविता से प्रार्थना ये की गई है कि अभी तक विषयों में लगा हुआ मन यानी इंद्रियां सभी, हे सविता आपके कृपा से विषयों से उपसंहृत होकर हटके फिर परमात्मा में लगना है, उसके लिए उस सामर्थ्य को प्राप्त करना है। तो ये इंद्रियां आदि सभी देवता प्रसन्न होंगे तो विषय से हटकर परमात्मा में लगने के लिए योग साधना के लिए है। अंगै स्थिरैर अंगै तुष्टवागु है, आ गया ना भद्रम, उसके साथ ये संबंध हो गया। ये भद्रम करणे भी श्रृणुयाम देवा भद्रम पश्येमा अक्षभिर यजत्राह स्थिरे रंगे स्तुष्ट वागुं सस्तनुभिर बेसेम देवहितम यदायु। ये सब क्या है? तैयारी है ये, और उसकी कृपा से ही ये सब साधन उपलब्ध होंगे हमारे। हाँ, यहां योग इत्यादि सविता यक प्रसादात अवाप्यते योग, कौन सा योग? तो बोले ध्यान योग। फिर वो ध्यान योग की बात आ रही है, ध्यान योग के साधन की प्राप्ति की प्रार्थना कर रहा है, ध्यान योग की नहीं। ध्यान योग तो मैं करूंगा, लेकिन ध्यान योग के लिए साधन चाहिए, वो साधन की प्राप्ति हो, चित्त स्थिर हो तब ध्यान योग बने, इंद्रियां चंचल न हो संयमित हो तब ध्यान योग बने, शरीर सुदृढ़ हो तो ध्यान योग बने, है ना। अग्नि शब्द इतरसाम अग्नि शब्द इतरा असाम इतरासाम इतरासाम अग्नि शब्द इतरासाम अप्यनुग्राहक देवतानाम उपलक्षणार्थ। अग्नि शब्द इतरासाम अपी अन्य इंद्रियों के भी देवताओं के साथ इसको जोड़ लेना उपलक्ष्य है, है ना। दुख आदि कहते हैं ना कि दुख तो कहा दुख ही है, आदि शब्द से सुख भी ले लिया, दुख आदि द्वंद्व। तो एक शब्द प्रयोग कर देते हैं उस समूह के, उस समूह में से जो एक है एक का नाम लेंगे और ये कहेंगे कि उसके साथ और जिसका नाम नहीं लिया है उस सबको भी ले लेना, ऐसा अर्थ होता है। हाँ। इसी तरह यहां अग्नि वाकेन्द्रिय का अधिदेवता है, है ना। तो उस वाकेन्द्रिय का अनुग्राहक कौन हो गया? तो अग्नि। तो वो अग्नि शब्द यहां वाकेन्द्रिय का अधिदेव है, अनुग्राहक है, तो वाक शब्द से और इतर इंद्रियों के जो अधिदेव हैं उनको भी ले लेना चाहिए उपलक्षणार्थम। युक्तेन मनसा वयम् देवस्य सवितुः सवे सुवर्गेयाय सत्या युक्तेन मनसा वयम् देवस्य सवितुः शवे सुवर्गीयाय शक्त्या युक्तेन मनसा वयम् देवस्य सवितुः शवे सुवर्गीयाय शक्त्या युक्तेन मनसा वयम् वयम् परमात्मा के ध्यान करना चाहने वाले ध्यायी है ना, या हम मुक्त होना चाहने वाले मुमुक्षु वयम् हम सभी मनसा युक्तेन साधनों से युक्त होकर मन उपलक्षित है, मन उपलक्षित अन्य साधन सभी साधनों से युक्त होकर देवस्य परमात्मस्य सवितु सवे प्रसवे स्वर्गीयाय शक्त्या स्वर्ग के लिए हम सामर्थ्यशाली बने, ये वाच्यार्थ है। इसको क्या कहा वाच्यार्थ, स्वर्गे आए माने स्वर्ग आएगा, समर्थ स्वर्गे आया सत्य। अब उसको भाष्य देख लो, युक्तेन इति यदा, क्योंकि ये मंत्र उपासना में भी प्रयोग है और उसी के माध्यम से इस मंत्र को उपनिषद में ले लिया गया है, तो इसलिए इसको ज्ञानार्थक भी करना पड़ेगा, केवल कर्मार्थक नहीं, मीमांसा पूर्व मीमांसा में भी ये मंत्र सब आएंगे, उपासना के प्रकरण में आएगा, कर्मकांड के प्रकरण में आ गया, और उपनिषद का उपनिषद में आ जाने के कारण ज्ञान ब्रह्म उसमें भी आ रहा है, तो इसलिए इसका वेदांति के हिसाब से ज्ञान मार्ग के हिसाब से लाक्षणिक मंत्र है, ये द्वैतार्थक मंत्र है, द्वैतार्थक भी है अद्वैतार्थक भी है, तो लक्षणा से अद्युक्तार्थ है, वाच्यार्थ से ये कर्म परक है उपासना परक है, लक्षणा से ज्ञान परक है, इसलिए लक्षण के अर्थ इन मंत्रों में सीधे सीधे ज्ञान का प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं, तात्पर्येण ज्ञान का प्रतिपादन करते हैं, तो यह आक्षेप आ सकता है ना कि जब सीधे ये ज्ञान का प्रतिपादन नहीं करते हैं तो इन श्रुतियों को उपनिषद में क्यों समावेश कर दिया गया, उपनिषद से इनको अलग कर देना चाहिए था, क्यों समावेश कर दिया गया, तो क्योंकि ये सीधे वाच्यार्थ माने सीधे अर्थ में ये ब्रह्म ज्ञान का समर्थक नहीं है, लक्षण अर्थ से ये समर्थक है, इसलिए उपनिषद में लिया गया है। युक्तेन यदि यदा तत्वाय, यदा जिस समय मन तत्वाय योजयन, तत्वज्ञान के लिए जब मन का प्रयोग होता है, योजन मन का संयोजन होता है, अनुग्राहक देवता शक्त्याधानेन, इन सबके अनुग्राहक जो अधिदैव हैं, तत्त्व वही पहले मंत्र से ही इसका भी संबंध है, उनके प्रसन्नता से इनमें वो शक्ति वो सामर्थ्यता आ जाएंगे, इन साधनों में, किन साधनों में, मन आदि इंद्रिय आदि सभी साधनों में उनके अधिदैव के प्रसन्नताओं से, देवताओं के प्रसन्नता से उनमें वो सामर्थ्यता आ जाएगा जो योग साधना में ध्यान आदि योग साधना में ये समर्थ होंगे। यदा तत्वाय मनोयोजयन अनुग्राहक देवता शक्त्याधानेन देह इंद्रिय दार्ढ्यम करोति, शरीर भी दृढ़ होना चाहिए ना, अब ब्रह्म विचार करने के लिए तो शरीर भी स्वस्थ होना ही चाहिए साधना में। तो भाई सिद्धि के बाद तो शरीर का कोई मतलब नहीं रहता है,